আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی 12ویں سالانہ فاتحہ ہے۔ حضرت کو ہم سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے 12 سال ہو چکے، لیکن الحمدللہ روحانی طور پر وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں۔ اسی مناسبت سے آج کی یہ نشست ہم حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ان کی مکمل سوان حیات آپ کے سامنے پیش کریں، اور اگر مکمل نہ بھی ہو سکی تو آئندہ اس کو پورا کر دیا جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی ولادت باسعادت 17 محرم الحرام 1350 ہجری مطابق 5 جون 1931 ہے، بروز جمعۃ المبارک آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ 9 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، اور اس کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں بھی اور مختلف مساجد میں آپ قرآن کریم سناتے رہے۔ روحانی تربیت کا آغاز بچپن ہی سے ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کے والد گرامی قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی خود ایک ولی کامل تھے۔ گھر کا ایک ماحول روحانی تھا، والدہ محترمہ روزانہ رات میں 2 بجے اٹھ کر تلاوت قرآن کرتی تھیں، والد گرامی قطب ربانی ذکر اذکار کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ بچوں پر اس کا اثر ہونا ایک فطری امر تھا۔ روحانی ماحول میں آنکھ کھولی، بلکہ روحانیت کی گود میں آنکھ کھولی۔ والد گرامی نے بچپن ہی سے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ چلہ کشی بھی آپ کو شروع کرا دی۔ اللہ الصمد، دعائے حزب البحر، سورہ مزمل، سورہ اخلاص، دلائل الخیرات اور دیگر خاندانی اہم وظائف جو سینہ بسینہ بزرگان دین سے چلے آ رہے تھے، والد گرامی نے ان کی آپ کو باقاعدہ اجازت دی، اور نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے چلے بھی کرائے۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد دہلی کی ایک مشہور مسجد ہے جامع مسجد فتح پوری، وہاں پر مدرسہ عالیہ قادریہ میں آپ داخل ہوئے اور درس نظامیہ کی تکمیل وہیں سے فرمائی، وقت کے جید علماء کی زیر نگرانی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، اور پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد یعنی 48 میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت قطب ربانی اپنے اہل و عیال کے ہمراہ हिंदुस्तान से हिजरत करके लाहौर तशरीफ लाए, चंद माह वहां कयाम फरमाया और फिर वहां से कराची तशरीफ लाए। सबसे पहले सूरह मुजम्मिल शरीफ के मुतालिक हम आपके सामने बयान करेंगे। और हजरत का यह मामूल था कि रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ा करते थे। इसका एक पस मंजर है और वो ये है कि दादा हुजूर किबला ने दरियाए जमुना में अपने वालिद गिरामी हजरत हाफिज सैयद हुसैन अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जेरे निगरानी 40 दिन तक सूरह मुजम्मिल शरीफ का चिल्ला किया। रात को 2 बजे से और 4 बजे तक 2 घंटे मुसलसल पानी में नाफ तक खड़े रहकर एक खास तादाद में सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ा करते। उसकी एक अलग तफसील है और वो हम हजरत कुतुब रब्बानी की सवाने हयात में आपको भी बता चुके हैं, बयान कर चुके हैं, इसलिए उसका इआदा अभी जरूरी नहीं। चिल्ला उन्होंने फरमा लिया। वालिद गिरामी हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी से अर्ज किया कि हुजूर मुझे भी आप चिल्ला करा दें। पाकिस्तान बनने के बाद जब यहां पर आए महाजरीन के लिए हुकूमत ने मिलिट्री हॉस्पिटल PNA शिफा क्लिफ्टन पे आज भी मौजूद है, वहां पर आर्जी तौर पर आबाद किया महाजरीन को और तिरपालें बीच में डालकर जैसे तिरपालों की एक दीवार बना दी, कमरे बना दी, क्योंकि बरामदा था एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, आपने देखे ना बहुत बड़े उसमें वरांडे होते हैं, तो बीच बीच में तिरपालें डालकर एक एक फैमिली के लिए कमरे बना दिए। वहां हजरत का कयाम था। 2 साल तक वहीं कयाम रहा और वहीं से हजरत ने रुजदो हिदायत का सिलसिला शुरू कर। वालिद ग्रामी ने फरमाया कि मैंने हजरत कुतुब रब्बानी से अर्ज किया, हुजूर आपने सूरह मुजम्मिल शरीफ का चिल्ला किया दरियाए जमुना में हिंदुस्तान में, मुझे भी चिल्ला करा दे। फरमाया हां जब वक्त आएगा देखा जाएगा। याद रखिए हर चीज का एक वक्त मुअय्यन है। हम चाहते हैं सारी चीज हमें आज ही मिल जाए, ऐसा नहीं है। जब तक अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म नहीं होता अल्लाह का वली अता नहीं फरमाता। और एक दूसरी बात है, अगर किसी से कुछ लेना हो उसके दिल को खुश कर दो। कहते ना एक दुआएं लेना और एक दुआ कराना। हुजूर हमारे लिए दुआ कर दें, हां ठीक है दुआ कर देंगे। और दूसरी चीज ऐसा काम करना कि दिल से खुद दुआ निकले, उसको कहते हैं दुआएं लेना। दुआ कराना और है, दुआएं लेना और है। कराने वाले तो सारे होते हैं, लेने वाले को एक ही होता। याद रखिए ऐसा काम करना कि पीर का दिल खुश हो जाए, उसके दिल से दुआ निकले, बेड़ा पार हो गए। कराने वाले तो बहुत से होते हैं, एक आया मेरे लिए दुआ कर दीजिए, दूसरा आया, तीसरा आया, उन्होंने कहा ठीक है हम सबके लिए दुआ कर। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि हजरत कहते रहे और हजरत कुतुब रब्बानी फरमाते रहे जब वक्त आएगा देखा जाए। फरमाते कि एक दिन हजरत को शदीद बुखार हुआ, सर्दियों के दिन थे, तेज हवा चल रही थी और खुला मैदान सामने था, जो बैर के बनी हुई थी सामने खुला मैदान, और खुला मैदान हो तो जाहिर है हवा तेज चलती, ठंडी हवा बिल्कुल यक हवा चल रही और रात का वक्त, और हजरत कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की एक आदत मुबारका थी जो उनके इश्क रसूल की सबसे बड़ी दलील है। जब भी करवट लेते थे बेख्तियार जबान से निकलता था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हम करवट लेते ना कभी आह निकल जाती है, कभी कोई जुमला निकल जाता है, उनकी जबान से निकलता ही बेख्तियार ये जुमला निकलता था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वारिद गिरामी हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने करवट ली और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर मुझसे कहा कि बेटा पानी लेकर आओ। मैं पानी लेने चला गया और जब मैं पानी लेकर वापिस आया तो देखा कि हजरत सो चुके, नींद आ गई। नींद आ गई, कोई और होता तो वो सोचता ये तो सो गए, मैं भी जाके गिलास रख दूं और मैं भी सो जाऊं, लेकिन दिल में ये ख्याल हुआ कि हो सकता है कि दरमियान में आंख खुल जाए, पानी तो मांगा है, अगर मैं नहीं हूंगा फिर मुझे पुकारेंगे या अगर ना बुलाया तो भी मसला सही नहीं है, उसी तरह गिलास लेकर खड़े रहे। ये भी इम्तिहान होता है, अल्लाह के वली जो हैं इम्तिहान लेते हैं। दो घंटे इसी कैफियत में पानी का गिलास लेकर खड़े रहे, तेज हवा चल रही है, सर्दी है, दिल चाहता है कि लिहाफ फोड़ कर लेट जाए, उसी सर्दी में तेज यख हवा में पानी का गिलास लेकर ऐसे बादब होकर खड़े, और हजरत कुतुब रब्बानी सो रहे। फरमाते हैं कि दो घंटे में मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन हो ठंडी हवा की वजह से, लेकिन मैंने सोचा कि बस यही रात है, इसी में जो कुछ मिलेगा मिल जाए, इम्तिहान था, इम्तिहान में पूरा उतरे। दो घंटे बाद जब हजरत की आंख खुली और हजरत कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरफ करवट ली और जबान से निकला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब देखा पूछा बेटा कैसे खड़े हो, आपने पानी मांगा था? अच्छा जब से खड़े हो? जी मैं जब से खड़ा, मैंने सोचा कि आपकी आंख खुल गई और आपको पानी की तलब थी, मैं नहीं हूंगा तो मुनासिब नहीं रहेगा, बस दिल खुश हो गया। तो इम्तिहान था ना, मेरी वजह से ये दो घंटे खड़ा रहा सर्दी में या ठंडी हवा में, दिल खुश हो गया। जब अल्लाह के वली का दिल खुश हो जाए खालिक कायनात भी राजी हो जाता। कहा वुजू कराओ, वुजू कराया, पानी पिया, मुसल्ले पर खड़े हुए और फरमाया आओ, इशारा किया। हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं आगे गया तो वालिद गिरामी कुतुब रब्बानी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर जोर से भींचा तो फरमाया मुझे महसूस हुआ कोई ठंडी चीज मेरे दिल के अंदर उतर रही। फिर दूसरी मर्तबा भींचा, तीसरी मर्तबा जोर से दबाया तो फरमाते हैं ऐसा लगा कि मेरा पूरा सीना हलक तक भर गया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया। फरमाया जाओ सूरह मुजम्मिल का अमल तुम्हें दे दी। सूरह मुजम्मिल का अमल तुम्हें दे दिया। जो चिल्ला हमने 40 दिन दरियाए जमुना में नाफ तक पानी में खड़े होकर किया, इतनी सख्ती झेली, सब कुछ किया, पानी के गिलास में तुम्हें दे दी। दिल खुश हो गया और फिर फरमाया अब 100 मरतबा सूरह मुजम्मिल रोजाना पढ़ते रहो। और आप ये सोच सकते हैं, बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि सूरह मुजम्मिल सख्त जलाली सूरत है। अगर कोई शख्स बगैर अपने शेख की इजाजत से अपनी मर्जी से इसकी तादाद बढ़ाए और किसी खास तादाद में पढ़ना शुरू कर दे, उसके अंदर गुस्सा पैदा हो जाए, जलाल पैदा हो जाए। और अगर किसी की इजाजत से पढ़े तो बात अलग है, फिर वो इजाजत देने वाला खुद निगरानी करे या वो इतनी तादाद बताएगा कि जिसमें वो जलाली ना हो, इसीलिए शेख की जरूरत होती है। इतनी जलाली चीज 100 मरतबा हजरत पढ़ते हैं, लेकिन आपने देखा, आपने खुद उनकी जियारत की, कभी उनके चेहरे पर जलाल के आसार ही नहीं, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। लोगों ने गुस्ताखियां की उनको माफ कर दिया, किसी ने गलती की उसे माफ कर दिया, ना किसी को झिड़का, ना किसी को डांटा, ना किसी को मारा। जिस बदबख्त ने आकर उन पर कातलाना हमला किया, एक पत्थर उनके चेहरे पर मारा जिससे नाक की हड्डी टूट गई, अस्पताल में रहे, वापिस आए, उसको भी माफ कर दिया। रहमत ही रहमत है, करम ही करम। 100 मरतबा सूरह मुजम्मिल। और सन 48 में हजरत तशरीफ लाए थे ना, और 2 साल मिलिट्री हॉस्पिटल में रहे, तो या तो सन 49 या 50 होगा, यही इन दोनों में से कोई एक सन होगा, क्योंकि वहीं इजाजत मिली थी उस मिलिट्री हॉस्पिटल में जहां मुहाजरीन आबाद थे, वहां हजरत को इजाजत मिली। अब उस सन से आप अंदाजा लगाएं, 49 या 50 से लेकर सन 2005 में हजरत का विसाल हुआ, एक दिन की भी नागा नहीं। हमें बुखार हो जाए तो नमाजें छोड़ दें, खांसी हो जाए, नजला हो जाए, वजाइफ छोड़ दें, आज दिन नहीं चाह रहा, आज थकान है, वजीफा कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ा तो कल डबल कर लेंगे। नहीं, अल्लाह के वली की शान ये इस्तकामत अल मामूलात, जो चीज शुरू कर दी बस उसको मरते दम तक उस पर कायम रहे। और जब आदमी इस्तकामत इख्तियार करता है, कुरान कहता है सुम्मस्तकामू, जब उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की, ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइका, फिर उन पे मलाइका का नुजूल होता। ये ऐसे नहीं बैठे हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, मलाइका रहमतें लेकर नाजिल होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस्तकामत के साथ अमल किया जाए। सारी जिंदगी कैसा ही मौसम हो, कैसी ही तबीयत हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो, बहार हो, सेहत हो, बीमारी हो, बुखार हो, कैसी कैफियत हो, सफर हो या हजर हो, उनके मामूलात में कोई कमी नहीं। सुबह का नाश्ता मिले ना मिले, सूरह मुजम्मिल पूरी होनी चाहिए, उनकी रूहानी गिजा बन गई। और जब ये चीजें रूहानी गिजा बन जाएं, तब इंसान की कैफियत ये होती है, उसको फिर किसी चीज की परवाह नहीं होती, उसका एक मामूल बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है। और उसमें अगर तब्दीली आ जाए तो फिर उसकी कैफियत दूसरी होती। 1996 में हजरत की कैफियत यह हुई, लाहौर तशरीफ ले गए तो वहां पर नाक से खून जारी हो गया। आप जानते हैं कि अगर इंसान का यह कैफियत हो और वो खून ऊपर की तरफ जाए दिमाग की तरफ, तो ब्रेन हैमरेज हो जाता, यानी कोई नस जो है ब्लॉक हो जाती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता, डेथ हो जाती। लेकिन अगर वो ऊपर की तरफ जाने के बजाय नीचे की तरफ आए, यानी नाक से खून जारी हो जाए, तो डॉक्टर हजरात कहते हैं ये अल्लाह की रहमत हुई, ऊपर जाने के बजाय खून निकल गया तो इसकी जिंदगी बच गई, ऊपर जाता तो ब्रेन हैमरेज हो जाता। तो हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के साथ यही कैफियत हुई, नाक से अचानक खून जारी हुआ और इतना जारी हुआ कि सब कपड़े और दाढ़ी शरीफ सब खून से तर बतर हो। लाहौर में आप तशरीफ फरमा थे, रावी रोड पर आपका कयाम था, हम सब आपको हॉस्पिटल लेकर गए, इत्तेफाक हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ, डॉक्टरों ने रुई अंदर नाक में लगाई और पूरी उसको यानी बंद कर दिया, टेप कर दिया ताकि खून ना निकले। अब जाहिर है इंसान या तो नाक से सांस लेगा या मुंह से लेगा, अगर नाक बंद हो तो मुंह से सांस लेगा, मुंह बंद होता है तो नाक से लेगा। अब नाक बंद है, मुंह खोलना पड़ा, बंद करो तो जाहिर है दम घुटता था। डॉक्टर ने कहा अच्छा जब उठकर बैठते थे तो फिर खून मुंह से आना शुरू हो जाता, तो वो कहते थे आप लेटे रहें, गर्दन ऐसे रखें और लेटे रहें। नींद की गोली दे दी, जितना ये सोएंगे उतना ज्यादा अच्छा है इनके लिए। और नींद की गोली जब अपना असर पूरा कर चुकी, यानी उनको पता था कि इतने घंटे तक आदमी सोएगा और जब इनकी आंख खुलेगी दोबारा आकर फिर गोली दे। फजर के वक्त उनकी कैफियत यह थी, सूरह मुजम्मिल शरीफ का टाइम था, नींद की गोली उनको दी गई, गोली ने जाहिर है अपना असर किया, लेकिन जब सूरह मुजम्मिल का टाइम आया, आंखें बंद हैं और जबान से जा रही है या अय्युहल मुज़म्मिलु कुम लैला इल्ला क़लील अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। एक आयत पढ़ें फिर कैफियत तारी हो जाए, फिर आयत पढ़ें फिर कैफियत तारी हो जाए। तो हजरत के एक मुरीद निसार अहमद पराचा, वो वहां मौजूद थे हॉस्पिटल में हमारे साथ थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कैफियत है, कि हजरत को नींद आ रही है लेकिन ये कुछ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ो, इसलिए कि इनका मामूल यही है कि रोजाना इस वक्त सूरह मुजम्मिल पढ़ते हैं। कहते तो नींद की गोली तो दी गई है लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, करवटें बदल रहे हैं और जबान से यही सूरत जारी है, कभी सो जाते हैं कभी उठते हैं, बेचैनी है। मैंने कहा मैं बताऊं क्यों बेचैनी है, बेचैनी यह है कि रूह अपनी गिजा मांग रही है। जो आदमी इतने साल से इसी वक्त पढ़ रहा हो, रूह गिजा मांग रही है और गोली अपना असर कर रही है, अब यह कश्मकश हो रही है। कहते हैं फिर क्या करें, हजरत को सुकून कैसे मिलेगा। मैंने कहा सुकून ऐसे मिलेगा कि जब वो नर्स गोली लेकर आए, क्योंकि डॉक्टर ने उसको कहा था इतनी देर के बाद दूसरी गोली दे देना, तो जब वो उसका खुमार खत्म होता था गोली का वो नशा, वो दोबारा गोली लेकर आती थी, अपने सामने खिलाती थी, पानी का गिलास लेकर आती। मैंने कहा जब वो लेकर आए ना उससे गोली लेकर रख लेना, कहना हम दे देंगे। वो आ गए अपने टाइम पर, गोली ली, हमने कहा हम दे देंगे आप जाइए, वो चली गई, हमने गोली डस्टबिन में डाल दी। अब जब वो कैफियत खत्म हुई, गोली का असर खत्म हुआ, तो हजरत उठकर बैठ गए और हम पर नाराज हुए कि देखो मेरे सूरह मुजम्मिल का टाइम है, तुम लोगों ने मुझे उठाया नहीं, जल्दी वुजू कराओ। हम वो तसला लेकर गए, वहीं उस पर बेड पर बैठे बैठे वुजू कराया, वो जब वुजू कर लिया, वो ऐसे करके लेटे, तस्बी उनके हाथ में थी, सूरह मुजम्मिल उसी वक्त शुरू कर दी, आंख बंद करके पढ़ते रहे पढ़ते रहे। 2 घंटे में 100 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ते थे, 2 घंटे में सूरह मुजम्मिल मुकम्मल हो जाता। 2 घंटे में उन्होंने सूरह मुजम्मिल शरीफ वहीं लेटे लेटे मुकम्मल की, उसके बाद दुआ की, चेहरे मुबारक पर हाथ फेरे और करवट लेकर लेट गए, बगैर गोली के नींद आ गई। अब कोई बेचैनी नहीं, बेकर बेखबर होकर सो गए। मैंने कहा देखा, रूह को गिजा मिल गई, सुकून मिल गया, रूह को गिजा मिल गई, सुकून मिल गया, अब गोली की जरूरत है? कहा नहीं। मैंने कहा फिर तुम गोली दे देकर सुला रहे हो, उधर सूरह मुजम्मिल का टाइम हो रहा है, रूह अपनी गिजा मांग रही है, गोली अपना असर कर रही है, कश्माकश हो रही। यह है बुजुर्गान दीन की शान कि उनको खाना मिले ना मिले, कोई चीज मिले ना मिले, उनके मामूलात पूरे होने चाहिए, ये उनकी रूहानी गिजा है। तो उनका मामूल ये था, 100 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ रोजाना फजर के बाद पढ़ते, और कभी इस मामूल में कमी नहीं आई, नाका नहीं हुई। ثم استقاموا, इस्तकामत के साथ उन्होंने अमल किया। दूसरी चीज जो उनके अमल में थी वह दुआएं हिजबुल बहर शरीफ, 22 मरतबा दुआएं हिजबुल बहर बाद नमाज असर वो पढ़ा करते, और इस मामूल में भी कभी कोई कमी नहीं आई। सफर में, हजर में, बीमारी में, कैसी कैफियत हो, जब तक पूरा नहीं कर लेते थे चैन नहीं आता, बेकरारी बेचैनी। दादा हुजूर किबला ने चिल्ला कशी कराई अपनी जेरे निगरानी, और चिल्ला कितना सख्त था, नमक से रोजा रखना है, नमक से खोलना है, नमक से रखना है, नमक से खोलना। 3 दिन में 125,000 मरतबा अल्लाहु समद मुकम्मल करना है, और जब तक मुकम्मल ना हो खाना पीना नहीं है। रोजे का टाइम आए, नमक से खोल लो, पानी पी लो, बस, कोई और चीज नहीं खा सकते। और खाने में भी ये नहीं है कि आप कोई मुरगन गिजा खा लें, सिर्फ फ्रूट खाने हैं, फल, और कुछ नहीं खाना। 3 दिन तक जब तक मुकम्मल ना हो, और जब चिल्ला मुकम्मल हो जाए तब जाके खाना खाना, रोटी वगैरह तब खाना। तर्क हैवाना जलाली जमाली के साथ हजरत ने चिल्ले किए, और सिर्फ अल्लाह समद के 70 चिल्ले किए, सिर्फ अल्लाह समद। और फरमाते थे कि जब ये 70 चिल्ले मुकम्मल हुए तो मेरी कैफियत ये थी कि जिस तरफ मैं निगाह डालता था मुझे अल्लाह समद लिखा हुआ नजर आता। तो फरमाते कि मैं जमीन पर नहीं देखता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जमीन पर निगाह पड़े तो यहां भी लिखा हुआ नजर आए तो बेद भी ना हो जाए। कल्ब और जहन में ये इसमें पाक रच गया था, बस गया। एक चिल्ला खत्म हुआ, उन्होंने कहा 1 दिन के बाद फिर शुरू करना, फिर खत्म हुआ, 1 दिन के बाद फिर शुरू करना। इस तरह करते करते 70 चिल्ले सिर्फ अल्लाह समझ के, फिर दुआए हिजुल बहर शरीफ का चिल्ला किया, दादा हजूर किबला ने कराया। वारिद ग्रामी हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत कुतुब रब्बानी से यह अर्ज किया कि मुझे अपने सिलसिले के बुजुर्गों की जियारत करनी। उन्होंने कहा कर लो, ये कौन सी मुश्किल बात, पहले उनके मजारात की जियारत करो, उसके बाद हम उनकी जियारत करेंगे। हर रोज एक बुजुर्ग के मजार की जियारत होती, और कमाल ये है, ख्वाब ये देखते थे, ताबीर वो बताते। अभी ख्वाब बताया नहीं है, आप मुझे कोई ख्वाब नहीं बताएंगे तो मैं ताबीर कैसे दूंगा। हजरत अशरफुल मशाइक रहमतुल्लाह अलैह ने रात में जियारत की किसी बुजुर्ग के मजार की या किसी बुजुर्ग की, दूसरे दिन जब नाश्ते पर बैठे फरमाते हैं अभी मैंने वालिदे गिरामी को कुछ नहीं बताया, बगैर बताई उन्होंने मेरी तरफ देखा और फरमाया बेटा कल रात तुमने जिन बुजुर्ग की जियारत की थी उनका नाम यह है, उनका मजार फला मकाम पर। अब पूछो उन अकल के अंधों से जो कहते हैं कि नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं, माजल्ला, अरे वली की ये शान है तो नबी का क्या मकाम हो, जब गुलाम नबी बता रहा है तो नबी का मकाम क्या होगा। इसीलिए हम कहते हैं वली के मकाम को देखकर नबी के मकाम को पहचानो, वली की शान को देखकर नबी की अजमत को पहचानो, जब गुलाम का यह हाल है तो इमाम का हाल क्या होगा। ایک دن فرمایا کہ میں جب ناشتے کے لیے بیٹھا تو والد گرامی نے فرمایا حضرت قطب ربانی نے، بیٹا کل رات تم نے جن بزرگ کی زیارت کی تھی ان کا نام حضرت عبداللہ ہے اور ان کا مزار مبارک ملک شام میں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، روزانہ اس طرح ہوتی تھی، تعارف کراتے تھے۔ جب 1962 میں حج کے لیے حضرت تشریف لے گئے، یعنی زیارت کی ہے غالباً 1955 میں یا اس سے کچھ آگے پیچھے کا سن ہوگا جب یہ چلا کشی چل رہی تھی، اور حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے وصال فرمایا 1961 میں، 61 درگاہ شریف جب قائم ہوئی 1961 میں، اس کے ایک سال کے بعد والد گرامی حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ پہلا حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے پہلا حج کیا 1962 میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد سورہ مزمل شریف پڑھ رہے، اور حضرت کا یہ معمول تھا کہ اس جگہ بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں کہ جہاں سے گنبد شریف بالکل سامنے نظر آتا۔ تو فرماتے میں دیکھتا رہتا تھا، سورہ مزمل پڑھتا رہتا، اور وہاں بیٹھے بیٹھے عجیب عجیب نظارے نظر آتے تھے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گنبد شریف پر بارش ہو رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابرق گر رہی ہے، کبھی محسوس ہوتا تھا کہ چمکی گر رہی ہے۔ تو پھر میرا دل کہتا تھا یہ تو واقعی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور وہاں تو ہر لمحے رحمت کی بارش ہوتی، جہاں 70,000 فرشتے سلامی کے لیے حاضر ہوں وہاں رحمت نہ ہو تو اور کہاں۔ رحمت للعالمین تو وہی ہیں، ساری رحمتیں تو وہیں سے بٹ رہی۔ تو فرماتے کہ میں وہاں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا ایک بزرگ سفید ریش، چمکتا ہوا چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، لمبا قد، فربا جسم، سفید امامہ اور سفید لباس جبا جو ہے پہنے ہوئے، اور پیلے رنگ کی تسبیح ان کے ہاتھ میں، وہ مسجد نبوی کے دالان میں ٹہل رہے، یہاں سے آگے جاتے ہیں وہاں سے واپس آتے۔ فرماتے لیکن اچانک جب میری نظر ان کے قدموں پر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ زمین سے ایک فٹ بلند تھے، چل رہے ہیں ایک فٹ بلند، جیسے ان کے لیے الگ کوئی سطح زمین یا کوئی چبوترا ہو اس پہ ٹہل رہے ہیں، عام لوگ نیچے چل رہے ہیں، وہ ایک فٹ بلند ہے، یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے ادھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، جیسے آدمی تسبیح لے کر ٹہلتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اس کیفیت۔ حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ فرماتے جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی تو میں سوچنے لگا ان کو کہیں دیکھا ہے، ظاہر ہے انسان کسی کو ایک دفعہ دیکھ لے اور دوبارہ وہی چہرہ نظر آئے تو ذہن میں خیال ہوتا ہے نا اس کو کہیں دیکھا، بہت سو کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، فوراً پہچان جاتے ہیں ہاں فلاں جگہ دیکھا، اور اگر کافی عرصہ گزر جائے دیکھے ہوئے، 8-10 سال گزر جائیں، پھر تھوڑا سا ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے کہ کہاں دیکھا تو یاد آ جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ میں نے اس کیفیت میں ان کو دیکھا، تو چہرہ دیکھ کر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے ان کو کہیں دیکھا ہے، ان کی کہیں زیارت کی ہے، لیکن ذہن میں نہیں آ رہا کہ کہاں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ قریب آئے تو میں نے کیا کیا، یعنی ایک مقام تک آتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے، پھر وہاں ایک مقام پر رکتے تھے پھر واپس آتے تھے، تو جہاں تک وہ آتے تھے میں اسی جگہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ جب یہ یہاں پر آئیں گے تو میں سلام کر کے مسافہ کروں گا، ان سے دس بوسی کر لوں گا۔ تو جب وہ آئے تو میں نے ان کو دیکھا چہرے کو، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ذہن میں سوچ رہا ہوں کہیں ان کو دیکھا۔ جب قریب آئے تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے ہاتھ بڑھائے، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھائے اور میں نے مسافہ کیا۔ حضرت فرماتے ہیں جب مسافہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہی اپنے ہاتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ محسوس ہی نہیں ہو رہا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے روئی روئی سے بھی زیادہ نرم، بہت کوئی معمولی سی جیسے روئی آپ ہاتھ میں رکھ لیں کتنی ہلکی سی محسوس ہوگی، ایسا محسوس ہوا ان کا ہاتھ۔ اور پھر میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، اب ذہن میں وہی سوال ہے کہ میں نے کہاں دیکھا۔ اب دیکھو اللہ کے ولی کی شان، فرماتے میں تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں نے انہیں کہاں دیکھا، انہوں نے فوراً مجھ سے کہا ہم نے 1955 میں خواب میں آپ کو اپنی زیارت کرائی تھی और दूसरे दिन आपके वालिद साहब ने हमारा तारुफ कराया था, हमारा नाम अब्दुल्ला है, हमारा मजार मुल्के शाम में। अल्लाह के वली की शान देखो, ये बदबख्त नबी की अजमत नहीं मानते, यहां गुलाम की शान देख लो, वली की शान देख लो। फरमा रहे हमारा मजार मुल्के शाम में है। अरे जिसका मजार हो वो जिंदा होता है, मजार वाले जिंदा हैं? हां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो सारे जिंदा। ये कहते नहीं, हम कहते वो भी सही कहते, उनके तो मुर्दा। जिनका कोई जिंदा ही नहीं तो वो यही कहेगा ना, हमारे तो सारे जिंदा हैं। क्या है, जमीन पर हो या जमीन में हो, सब जिंदा हैं। जितने वली हैं सब जिंदा हैं, जितने औलिया सब जिंदा हैं, जितने शोहदा सब जिंदा हैं, जितने सालेहीन सब जिंदा हैं, जितने अंबिया हैं सब जिंदा हैं, सैयदुल अंबिया बदर्जे औला जिंदा। खुद अपना तारुफ करा रहे हैं और उसके बाद वापिस मुड़े और गायब हो गए। गायब हो गए उसी वक्त, जाते हुए नहीं देखा कि कहां गए, एकदम उधर लो अपनी जियारत करा दी। यह है अल्लाह के वलियों की शान। और रूहानी तौर पर वहां मौजूद थे, इससे यह भी साबित हुआ कि जो बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन विसाल कर चुके हैं वो जब चाहें मदीने तैयबा हाजरी दे। रूह के लिए तो कोई कैद नहीं ना, रूह जब तक जिस्म में कैद है तब वीजे की जरूरत है, तब टिकट की जरूरत है, तब फ्लाइट की जरूरत है। अरे रूह जिस्म से आजाद हो गई, न कोई वीजा है, न कोई फ्लाइट है, न कुछ है, रूह जहां चाहे जब चाहे चली जाए। जिसकी रूहानियत जितनी कवि है वो जब चाहे जिस मकाम पर चाहे तसरुफ करे, जिस मकाम पर चाहे चले जाए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। तो ये बुजुर्गान दीन रूहानी तौर पर वहां हाजिर होते हैं। क्यों? सबसे बड़ा मरकज तो वही है, सारी रहमतें तो वहीं से मिल रही, सारी बरकतें तो वहीं से मिल रही। तो हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ शफी जिलानी नब्बरल्लाह मरकदहू ने इस तरह बुजुर्गान दीन की जियारत। फिर दुआएं हिज्जुल बहर का चिल्ला हजरत कुतुब रब्बानी ने अपनी निगरानी में कराया। फरमाते हैं कि एक दिन जब चिल्ले का आखिरी दिन था, 40वां दिन मुकम्मल होने वाला था, मुकम्मल हुआ, हजरत कुतुब रब्बानी ने दुआ फरमाई, इसाले सवाब किया, साहिब हिज्जुल बहर हजरत शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह रूह पाक। फिर फरमाया आज रात उनकी जियारत करना, आज तुम्हें जियारत होगी, ठीक। हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं सो गया, मैंने ख्वाब में देखा कि वालिद गिरामी हजरत कुतुब रब्बानी तशरीफ लाए और मेरा बाजू पकड़कर कहा चलो हम तुम्हें जियारत कराएं। हजरत शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक मैदान है, सामने एक इमारत है, किला नुमा इमारत, बहुत बुलंद, उसका एक अजीम शान दरवाजा, और उस दरवाजे पर दो दरबान खड़े हुए लकड़ी लेकर ऐसे क्रॉस में जैसे कोई अंदर ना जा सके। तो हजरत कुतुब रब्बानी मेरा हाथ पकड़ के वहां तक ले गए, उनको देखते ही उन्होंने ऐसे रास्ता दे दिया और हम अंदर चले गए। उन्होंने कहा बेटा वजू कर लो। फरमाते जैसे बहुत बड़ी मस्जिद होती है, वजू खाना होता है, तो मैंने वहां से वजू किया, ये ख्वाब की कैफियत है। वजू करके फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कहा चलो। कहते जब हम मस्जिद के सहन में दाखिल हुए तो देखा पूरी मस्जिद जो थी लोगों से भरी, लेकिन वो आम लोग नहीं है, सब के सब बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन। किसी की सफेद दाढ़ी है, किसी की काली दाढ़ी है, लेकिन सब के सब सफेद अमामा और सफेद लिबास पहने हुए, और सबके चेहरे जो हैं वो चमक रहे। हम उन सब के दरमियान से गुजरते हुए सीधे आगे बढ़ते रहे और फरमाते हजरत कुतुब रब्बानी मेरा हाथ पकड़कर आगे जा रहे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा। मेहराब में पहुंचे, मस्जिद की जो मेहराब होती है, और आप देखते ना कि इमाम सलाम फेरने के बाद दाएं जानिब मुड़ के बैठता है, फिर दुआ होती। उसी कैफियत में एक बुजुर्ग बैठे हुए मेहराब, बड़ा नूरानी चेहरा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सफेद अमामा है और सफेद दाढ़ी है, रीशे मुबारक, सफेद लिबास, जुब्बा पहने हुए और इसी अंदाज में बैठे जैसे नमाज पढ़ा के दाएं जानिब। हजरत कुतुब रब्बानी लेकर गए और जाकर उनके कदमों में डाल दिया। اور فرمایا یہ آگے آپ کا غلام، اسے آپ دعائے عز البحر کا حصہ دے دیجئے۔ فرماتے میں نے ان کی دس بوسی کی، اور پھر ان سے فرمایا یہ ہیں حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے اس وقت میں نے ان کی زیارت کی، وہ خوش ہوئے، ان کے سامنے جلیبی کا ایک تھال رکھا ہوا، جلیبیاں پھری ہوئی، تو انہوں نے جلیبی اٹھائی اور مجھے کھلائی۔ حضرت فرماتے میں نے کھائی، دوسری کھلائی، تیسری کھلائی، چوتھی کھلائی، مسلسل مجھے کھلا رہے ہیں اور میں کھا رہا ہوں۔ فرماتے میرا پیٹ بھر گیا، اب میں سوچنے لگا کہ میں ان سے کہوں کہ حضرت بس میں کافی میں کھا چکا، تو وہ خود ہی رکے اور کہا بیٹا اب اپنا دامن پھیلاؤ۔ کہتے میں نے کرتے کا دامن ایسے پھیلا دیا، انہوں نے جلیبیاں اٹھا کے اس میں ڈالنا شروع کر، کرتے میں ایک دفعہ ڈالی، دوسری دفعہ ڈالی، تیسری دفعہ، یہاں تک کہ بالکل میرے چہرے تک وہ آ گئی، ایسے میں پکڑا ہوں اور وہ جلیبیاں بھری ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا جاؤ، دعائے عز البحر کا فیض ہم نے تمہیں دے دیا، اب یہ لٹاتے رہو۔ وہ جلیبیوں کی صورت میں تھا۔ اب حضرت فرماتے میں اسی طرح پکڑے ہوئے میں واپس اٹھا، اور جب میں واپس چلا تو جتنے بھی لوگ تھے سب سبحان اللہ مرحبا مرحبا کہہ رہے اور مجھے مبارکباد دے رہے، وہ جتنے بزرگان دین تھے وہ سب روحانی طور پر وہاں موجود۔ پھر فرمایا کہ میں چلتے چلتے مسجد کے دروازے تک آیا اور دل میں سوچا جب میں گھر جاؤں گا تو لوگ ہنسیں گے، یہ جلیبیاں اپنے دامن میں بھر کے لیا ہے، جلیبیوں کو پلیٹ ہو نا، کوئی پلیٹ ہو، کوئی تھیلی ہو، حضرت نے تو ایسے ہی ڈال دیا اور میں انکار بھی نہیں کر سکا، اب میں گھر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ فرماتے ہیں یہی میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی جگہ ٹکرایا اور میری آنکھ کھل گئی، تو جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر صحن میں جو ستون تھا میں وہاں تک پہنچ گیا تھا اور اس سے میں ٹکرایا تھا، اور جب میں ٹکرایا تو وارث گرامی حضرت قطب ربانی اپنے کمرے سے واپس آئے، باہر تشریف لائے اور فوراً مجھے پکڑا، کہا ٹھہر جاؤ گر جاؤ گے۔ تب میری آنکھ کھلی، اور کمال کی بات یہ تھی کہ حضرت شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جو جلیبیاں کھلائی تھیں فرماتے ان کی مٹھاس اس وقت تک منہ میں موجود تھی، ان کی مٹھاس موجود تھی۔ یہ ہے بزرگان دین کی شان۔ اس طرح حضرت اشرف المشائخ نے دعائے حفظ البحر کا فیض حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا، اور ساری زندگی اس دعا کو اپنے ورد میں رکھا، نہ صرف اپنے ورد میں بلکہ اپنے مریدین میں بھی عام کر دی۔ وہ دعا عظیم و شان دعا، تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین نے اس دعا کو نہ صرف اپنے عمل میں رکھا بلکہ اپنے مریدین معتقدین میں بھی عام کر دیا۔ سب پڑھیں، سب فیض حاصل کریں، ان کا فیض آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے۔ یہ آپ کے معمول میں تھی، اور آپ نے ہی دعائیں عز البحر کا چلہ رمضان المبارک میں شروع کیا، یہ حضرت قطب ربانی کے حکم سے، ان کی اجازت سے حضرت اشرف المشائخ نے رمضان المبارک میں یہ چلہ شروع کیا، ورنہ عام طور پہ یہ علیحدہ ہوتا تھا۔ اب عام دنوں میں اگر کسی سے کہا جائے کہ 40 روزے رکھو تو رکھے گا کوئی؟ رمضان کے ہی مشکل سے رکھتے تو رمضان کے علاوہ، تو خیر آپ لوگ تو رکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی بات نہیں، عام لوگوں کی بات۔ تو حضرت نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس چلے کو رمضان المبارک میں کر دیا کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ یکم رمضان سے شروع ہو اور عید کا دن چھوڑ کر پھر باقی روزے عید کے بعد پورے کر لیں۔ اگر 29 کا چاند ہو تو 11 روزے رکھیں، اگر 30 کا چاند ہو تو عید کا دن چھوڑ کے 10 روزے رکھیں، اور اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ شش عید کے روزے بھی اس میں آ جائیں گے، باقی 4 روزے اور رکھ لیں، 40 دن پورے ہو گئے، 40 روزے ہو گئے، دعائے حضرت البحر کا چلہ پورا ہو۔ تو حضرت نے اس کو جاری کیا، اور یہ انہی کی نگاہ کرم سے ہم سب یہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو پہلی چیز جو ان کے معمول میں تھی سورہ مزمل شریف 100 مرتبہ، دوسری چیز جو ان کے معمولات میں تھی دعائے حضرت البحر 22 مرتبہ بعد نماز عصر، تیسری چیز جو ان کے معمولات میں تھی سورہ اخلاص 1000 مرتبہ بعد نماز عشاء، کبھی ناغا نہیں ہوئی، کبھی گیپ نہیں آیا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص۔ और चौथी चीज 100 नफिल रोजाना रात में पाबंदी के साथ। हमारी नमाजें पूरी नहीं होती, अल्लाह का वली नमाजों के बाद 100 नफिल भी पढ़ रहा है। और कैफियत क्या है, कभी भी इस मामूल में तब्दीली नहीं आई, नागा नहीं हुई, कमी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि आज तबीयत सही नहीं है चलो 8-10 नफिल पढ़ के सो जाओ, आज तबीयत सही नहीं चलो 50 पढ़ लो बाकी बाद में, नहीं। सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, बीमारी हो, गमी हो, खुशी हो, सफर हो, हजर हो, कैसी कैफियत हो, 100 नफिल पूरे होने। 1986 में, 86 में हजरत के साथ मैं लंदन गया, कोयत एयरवेज से हमारा टिकट था। और आप जानते हैं कि जो एयरलाइन आप जिस एयरलाइन से जाएं वो अपने एयरपोर्ट पर स्टे जरूर करती। मसलन आप एमिरेट से अगर हज के लिए जाएं तो दुबई में स्टे होगा, इमारात एयरवेज से जाएं तो अबू धाबी में होगा, इसी तरह टर्किश एयरवेज से जाएं तो इस्तांबुल पर स्टे होगा। अपनी जमीन पर यानी एयरपोर्ट पर 1 घंटे का या 2 घंटे का स्टे रखते हैं वो लोग। हम कोयत एयरवेज से गए, हमें बताया गया कि जी 1 घंटा आपका स्टे कोयत एयरपोर्ट पर है, 1 घंटे आपको रुकना है और फिर उसी फ्लाइट या दूसरी फ्लाइट से आप फिर लंदन रवाना हो जाएं। रात की फ्लाइट थी, उस वक्त हजरत अशरफुल मशाइख की सेहत बिल्कुल दुरुस्त थी, व्हीलचेयर भी इस्तेमाल नहीं करते थे, यहां तक के लकड़ी भी इस्तेमाल नहीं करते थे, बिल्कुल सेहत सही थी, खुद चलते थे बगैर किसी सहारे। कोयत एयरपोर्ट पर जहाज उतरा, ऐलान हुआ कि आपको 1 घंटे के बाद दोबारा रवाना होना है, 1 घंटे आप यहां रुकेंगे। हजरत का मामूल था कि रात को 1 बजे अपने नफिल शुरू करते पाबंदी के साथ, जैसे ही 1 बजा और फौरन उन्होंने शुरू कर। जब हम उतरे तो 1:15 बज रहा था, 15 मिनट थे हजरत के नफिल शुरू होने और 2 घंटे में 100 नफिल पूरे होते थे। अब मैंने सोचा कि रुकना तो 1 घंटे है और हजरत के नफिल तो 2 घंटे में पूरे होंगे। हजरत ने मुझसे फरमाया कि तुम यहां एयरपोर्ट पे देखो कोई जगह हो तो हम वहां मुसल्ला बिछा के अपने नफिल शुरू कर दो। मैंने देखा तो जिस तरह आपको पता है कि मस्जिद की जगह एयरपोर्ट पे बना देते हैं, बाज जगह तो पूरी मस्जिद ही बनी है, बाज जगह ऐसी छोटी सी एक कालीन वगैरह बिछा के वहां मॉस्क लिख देते हैं, मस्जिद लिख देते हैं कि भाई ये नमाज की जगह। एक जगह मुझे नजर आई, मैंने आपको बताया, आपने फरमाया चलो हम वहां चलते। रात का वक्त था, हजरत ने मुसल्ला बिछाया और नफिल शुरू करने लगे तो मैंने अर्ज किया कि आपके नफिल तो 2 घंटे में पूरे होंगे और हमें सिर्फ 1 घंटे रुकना है तो कैसे मुकम्मल होंगे। फरमाया तुम इसकी फिक्र ना करो, और उसके बाद नियत बांध के खड़े हो, मैं पीछे बैठ गया। अब मैं सोचने लगा कि 1 घंटे रुकना है लेकिन 1 घंटे से पहले ऐलान हो जाएगा कि भाई जहाज पर जाइए ताकि 1 घंटे से पहले पहले रवाना हो जाए। अब आप देखिए अल्लाह के वली की शान, मामूलात पर इस्तेकामत। उनको कोई परवाह नहीं थी कि ऐलान हो या ना हो, उन्होंने नियत बांधी, नफिल शुरू कर दी। उस जमाने में आखिरी उम्र में तो बैठ के पढ़ते थे इसलिए कि बीमार हो गए थे काफी, लेकिन उस वक्त खड़े होकर बाकायदा पढ़ते, सलाम फेरा, दोबारा खड़े हुए, फिर नियत बांधनी, फिर सलाम फेरा, और मैं पीछे बैठा हुआ टाइम देख रहा हूं, अब घंटा पूरा होने वाला है, अब ऐलान होने वाला है कि आप जहाज पे चलिए, और ऐलान ही नहीं हुआ। 1 घंटे बाद जब 1 घंटा पूरा हुआ, बल्कि होने वाला था, तो उस वक्त ऐलान हुआ कि फ्लाइट मजीद 1 घंटे लेट है। यह है अल्लाह के वली की शान। और उन्होंने पलटकर पूछा भी नहीं कि क्या ऐलान हुआ क्या नहीं हुआ, सलाम फेरा, फिर दोबारा खड़े हो गए नियत बांध, फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध। एक इन्हमाक के साथ, खुशू व खुजू के साथ, दुनिया माफिया से बेखबर होकर अल्लाह का वली अल्लाह की इबादत में लगा। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा शायद सलाम फेर के पूछेंगे क्या ऐलान हुआ, उनको तो पहले ही पता था ऐलान मेरी वजह से तो हो रहा, उनको पहले ही मालूम था, जब तो उन्होंने शुरू किए, पूछा ही नहीं। और मैंने जब इधर उधर नजर दौड़ाई तो लोगों की कैफियत अजीब थी, टाइम गुजारना मुश्किल था, कोई तो आपस में गुफ्तगू करते हुए टाइम गुजार रहा है, कोई बच्चों के साथ खेल रहा है, भाग रहा है, टाइम गुजार रहा है। एक साहब का बच्चा ज्यादा रो रहा था तो वो वो जो खुदकार जीने होते हैं वो उस पर बच्चे को लेके खड़े होते, ऊपर चले जाते दूसरे जीने से फिर नीचे उतर आते, वो यही खेल कर रहे। कोई कैंटीन में उधर चला गया कहीं से चाय वाय मिल जाए, तो चाय मिल गई तो वो आके अपनी फैमिली के साथ चाय पी रहा है। मैंने पूरे जो मुसाफिर थे सब पर नजर दौड़ाई, सब के सब दुनियावी कामों में लगे हुए थे, एक अल्लाह का वली अल्लाह के काम में लगा, उसको कोई फिक्र नहीं थी दुनिया और माफिया की, वो अपनी इबादत में लगा हो। और उसके बाद क्योंकि फ्लाइट एक घंटे लेट थी, दो घंटे हो गए, दो घंटे के बाद हजरत के नफिल पूरे हुए, और इस दो घंटे के दौरान उन्होंने कोई स्टे नहीं किया, यानी कोई दरमियान नहीं आया कि थोड़ी देर वो लेट जाएं या कुछ करें या मुझसे पूछें ऐलान हुआ या नहीं हुआ, पूरे इन्हें माँ के साथ खुशू खुशू के साथ पढ़ते रहे। जब उनके सौ नफिल पूरे हुए उन्होंने दस्ते मुबारक उठाए, दुआ की, मैं भी पीछे बैठ के दुआ करता रहा, चेहरे मुबारक पर हाथ फेरे, इधर उन्होंने हाथ फेरे उधर ऐलान हुआ फ्लाइट तैयार है जहाज पे तशरीफ ले जाइए। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फरमाया तुम अल्लाह के काम में लग जाओ अल्लाह तुम्हारे काम में लग जाए। ये है इस्तेकामत अल मामूलात, यही उन्होंने हमें सबक दिया, अपने मामूलात पर इस्तेकामत के साथ अमल करो, दुनिया इधर से उधर हो जाए तुम्हारा मामूल खत्म नहीं होना चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इस्तेकामत के साथ अमल किया, अल्लाह ने खुद ही फ्लाइट को लेट कर दिया। और ये नहीं कि बाद में आकर लोगों को बताया कि देखो मेरी वजह से यह हो गया, कभी जिक्र तक नहीं किया किसी से, कोई और होता तो बड़ा खुश होता लोगों को, देखो मेरी वजह से फ्लाइट लेट हो गई, देखो मेरे नफिल पूरे हो गए फ्लाइट लेट हो गई, कभी जिक्र तक नहीं किया। और अगर कभी हम जिक्र करते फरमाते नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का करम है, हम जो कुछ करते हैं उसके लिए, अगर वो कबूल कर ले उसकी करम नवाजी उसकी मेहरबानी, हम दुनिया भी दिखावे के लिए नहीं करते। हजरत ने अपनी जिंदगी में 17 मरतबा हरमैन शरीफैन की जियारत की और सआदत हासिल की, 17 हज किए मुसलसल, कोई गैप नहीं आया बीच में। बहुत सी कानून में तब्दीलियां होती रहीं, जो इस साल जाएगा वो अगले साल नहीं जाएगा, जो एक साल जाएगा वो पांच साल नहीं जाएगा, वो दो साल नहीं जाएगा, मुख्तलिफ कानून बनते रहे, लेकिन हजरत की कैफियत ये थी हर साल जाते थे। लोग कहते थे इस साल कैसे जाएंगे, फिर कोई ना कोई ऐसी सूरत निकल आती थी चले जाते, तो लोगों ने पूछा हजरत जी क्या बात है, लोग रुक जाते हैं आप हर साल चले जाते हैं, कोई ना कोई सूरत निकल आती आप चले जाते। फरमाया मैं जब हज करके मदीने तैयबा हाजिर होता हूं और जब वापस आने लगता हूं अगले साल की दरखास्त पहले ही लगा देता हूं, तो जब पहले ही मंजूरी हो जाती है तो ये लोग क्या रोक सकते हैं, वीजा तो सरकारें मदीना देते हैं, जब वहां से मैं वीजा लेकर आ गया तो ये कहां से रोकेंगे, इसलिए हर साल हाजिरी हो रही। हजरत की ये हमने कोशिश तो की कि पूरी सवाने हयात मुकम्मल कर ले, लेकिन अब मगरिब का वक्त करीब है, इसी पे इक्तफा करते हैं, इंशाल्लाह आइंदा नशिस्त में हम इसको मुकम्मल करेंगे, हजरत की करामात, हज के वाकयात और दीगर चीजें। लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कभी भी जाहिर नहीं किया कि वो किस मकाम पर थे, किस मर्तबे पर थे, क्या उनका कष्ट था, क्या करामते थी, कितनी चीजें जाहिर हुई हजरत उसको छुपाते रहे। एक मरतबा मैंने अपने महनामा अशरफ में एक सिलसिला शुरू किया और उसमें लिखा वाकयाते हकीकत फी हयात शेख तरीकत, ये उस मजमून का उनवान रखा, और सिर्फ हज के वाकयात हमने जमा किए कि जो हज में आपको बुजुर्गान दीन की जियारत हुई, सरकार मदीना की जियारत हुई सारी, जब पहली किस्त उसकी छपी हजरत ने फौरन मुझे बुलाया, फरमाया तुमने क्यों लिखा, मैंने कहा तो सही वाकयात हैं, ये तो आपके हज के सच्चे वाकयात हैं, फरमाया नहीं ये रियाकारी में शामिल हो जाएगा, ये खुद नुमाई खुद सराई में शामिल हो जाएगा कि हम अपने रिसाले में अपनी चीजें बयान कर रहे हैं, खबरदार ये सिलसिला बंद कर दो, मेरे विसाल तक ये कोई चीज बयान नहीं करनी, कोई और होता तो खुश होता मेरी करामतें बयान हो रही हैं, मेरे वाकयात बयान हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह के वली की शान ये है वो जो कुछ भी करता है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, यही उनका सबक था, यही उनकी हिदायत थी, इसी पर कायम दाइम रहिए। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने पीर मुर्शिद हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशफी अल जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहू के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तरह अपने मामूलात पर इस्तेकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनका रूहानी फैज उनकी निगाह करम, उनके रूहानी तसरुफात जारी सारी फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मरकद मुबारक पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए और उनकी नालायन पाक से लगे हुए जर्रों के सदके में हम सब की मगफिरत फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।